ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच, भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्। इसमें पाठ भेद है, आत्मत्वात् भक्त वश्यत्वात् सत्यवाक्यात् स्वभावतः। किसी वैष्णव का जोड़ा हुआ है, असली है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्। जथा भूतानि भूतेषु खुम्बाय अग्निर्जलम् महि, तथा हम च मनः प्राण बुद्धिन्द्रिय गुणाश्रयः। इसमें तीन लाइन है ना, आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजेऽहम्यनुपालये, आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना। आत्मज्ञानमयो शुद्धः, आत्मा ज्ञानमय शुद्ध व्यतिरिक्तो गुणान्वय, सुषुप्ति स्वप्न जाग्रत भी माया वृत्ति भीरियते। जिनेन्द्रियार्थं ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः, तन्निरुन्ध्याद् इन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत। भगवान का पत्र चल रहा है। एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्, त्यागस्तपोदमः सत्यम् समुद्रांता इवापगः। जत्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियदृशां, मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया। जथा दूरचरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते, स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षिगोचरे। मय्याविश्य मनः कृतस्नां विमुक्ता शेषवृत्तिजा, अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैश्यथ। या मया क्रीडता रात्र्याम् वनेऽस्मिन् ब्रज आस्थितः, अलब्धराशः कल्याण्यो मा पूर्मद्वीर्ज चिन्तया। श्रीशुक उवाच, एवं प्रियतमादिष्ट आकल्य ब्रज जोषितः ताऊचूरुद्धवं प्रीतः तत्संदेशागतस्मृतिः गोप्या ऊचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो जदूनां सानुगोघकृत् दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्ते चितोऽधुना कचिद् गदाग्रजः सौम्यः करोति पुरयोषिताम् प्रीतिम् न स्निग्ध स व्रीड हासोदारे क्षणार्चितः कथम् रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम् नानुबद्धेत तद्वाक्यैः विभ्रमैश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणाम् ग्राम्यः स्वैरकथान्तरे ताः किम् निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिः वृन्दावने कुङ्कुमुदकुन्द शशाङ्करम्य रेमे क्वणच्चरणो पुरुरासगोष्ठ्याम् अस्माभिरीडित मनोज्ञ कथ कदाचित् अप्येष्यतिह दासार्हः तप्तः स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नो गात्रैः जथेन्द्रो वनमम्बुदये कस्मात् कृष्णैः आयाति प्राप्तराज्यो हताहितः नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः किमस्माभिर्वनौकोभिः अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परम् सौख्यम् हि नैराश्याम् स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला तज्जानतीनाम्नः कृष्णे तथा प्याशा दुरत्यया क उत्सहेत संत्यक्तुम् उत्तमश्लोक संविदम् अनिच्छतोऽपि जस्य श्रीः अङ्गान्नाच्यवते क्वचित् शरीच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरमायिने संकर्षणसहायेन कृष्णेन चरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुम् नैव शक्नुमः। गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकनै माधव्या गिराहृतधिय माधव कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमानाथ व्रजनार्थार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं ब्रजनर्णवात्। लास्ट के 6 श्लोकों की आवृत्ति 6-6 करेंगे। उद्धव जी ने कहा कि हे सदा कल्याण स्वरूप गोपियों, आपकी कृपा से कुछ निवेदन कर रहा हूं। मैं भगवान श्रीकृष्ण का अंतरंग सेवक हूं, कृपा करके भगवान अपना रहस्य में कार्य हमसे कराते हैं। तो प्रियतम कृष्ण का आपको सर्वथा सुख देने वाला गोपनीय संदेश लेकर यहां आया हूं, आप कृपया श्रवण करें। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा है, हे गोपियों, आपका वियोग किसी प्रकार से अल्प प्रमाण में भी मुझे नहीं है। कारण कि मैं सबकी आत्मा हूं, हे ब्रजनारियों, जैसे पांच भौतिक शरीरों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रहती है, इन पंचभौतिक देहों के ये पंचभूत आश्रय हैं, वैसे ही मैं सबकी आत्मा होने से मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और गुणों का आश्रय हूं। सबका समवाय कारण एवं निमित्त कारण मैं हूं। शरीरों में पांच चीज लगे हैं, तो जब तक शरीर है तब तक पांचों का वियोग नहीं होता है। शरीर में मिट्टी रहती ही है, वायु रहता है, अग्नि रहता है, आकाश रहता है, सब। भगवान कह रहे हैं इसी तरह से मैं सबका निमित्त कारण भी हूं, उपादान कारण भी हूं, अतः मुझसे किसी का वियोग संभव नहीं है। विशेष करके आप लोगों के साथ तो मेरा कभी कोई भी जोड़ नहीं है, किसी भी अवस्था में। भौतिक नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना, क्वचित, क्वचित मतलब किसी भी समय में, किसी भी देश में आप रहें, मैं आपके साथ। इस वाक्य को पहले गोपियों ने नहीं समझे कि क्या कह रहे हैं। जैसे घड़े में कुंभकार चक्र और मिट्टी आदि भिन्न पदार्थ होते हैं, वैसे ब्रह्मांड बनाने में मेरे लिए नहीं है। जैसे घड़ा बनाने में कुंभकार और चक्का और मिट्टी आदि पदार्थ की जरूरत पड़ती है, वैसे ब्रह्मांड बनाने में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। स आत्मानम स्वयं अकुरत स सर्वम अभूत, इस वाक्य का उल्लेख करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा में ही आत्मा रूप साधन से अपनी ही आत्मा की ही रचना करता हूं, विसर्जन करता हूं और पालन करता हूं। ये सर्जन विसर्जन और पालन आदि मेरी माया के बल प्रमाण से सामर्थ्य से भूत इंद्रिय और गुण द्वारा होते रहते हैं। संसार की रचना मैं करता हूं, कहां करते हैं तो आत्मा नहीं अपने में। जैसे कोई घर बनाने के लिए भूमि चाहिए तो ऐसे ही कोई आश्रय चाहिए सृष्टि के लिए, पदार्थ कहां रखा जाए, तो भगवान कहते हैं कि आत्मा नहीं, मैं अपने में ही बनाता हूं और अपने से बनाता हूं और अपने को ही बनाता हूं। आत्मा सृजे सृष्टि करता हूं, हनमी उपसंहार कर लेता हूं और अनुपालय मैं सृष्टि करता हूं, पालन करता हूं, संहार कर लेता हूं। मैं अपनी माया के प्रभाव से, योग शक्ति के प्रभाव से आत्म माया अनुभावे न भूतेन्द्रिय गुणात्मन, मैं ही पंचभौतिक पदार्थ के रूप में हो जाता हूं, इंद्रियों के रूप में और इंद्रियों के गुणों के रूप में, शब्द रूप रस आदि के रूप में। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि जब आप ही ये सारी चीजें बने हैं तो आप कर्म में लिप्त हो जाते होंगे, आप पर प्रभाव पड़ता होगा माया का। तो नहीं नहीं, आत्मा ज्ञानमय शुद्ध व्यतिरिक्त अगुणान्वय सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी माया पृथ्वी दिए थे। आत्मा चिन्मय है, ज्ञानमय है और शुद्ध है, सर्वथा प्रकृति के पदार्थों से रहित है। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये सारे प्राकृतिक पदार्थ मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, मुझमें उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनके रूप में होता हूं। और फिर कहते हैं नहीं, ये आत्मा व्यतिरिक्त है, माया के गुणों से परे है, अगुणान्वय, गुणों में अनुसूत नहीं है, गुण अलग है, आत्मा अलग है। सुसुप्ति स्वप्न जागृत भी माया पृथ्वी रियते हैं। गोपी जनों को भगवान ने कहा कि ब्रह्म भाव से वियोग नहीं है, अब जीव भाव से भी वियोग नहीं है यह कहते हैं। जीव आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध है और देह आदि से व्यतिरिक्त भिन्न पदार्थ है, गुणों का आश्रित नहीं है, सुषुप्ति स्वप्न और जागृत के ये तीन माया की जो वृत्तियां हैं उनसे भी भिन्न है, फिर भी चैतन्य होने से ऐसा समझा जा सकता है। भगवान की इस फिलॉसफी को न समझने की जरूरत है और न समझ में आ रहा है। जिस मन से स्वप्न की भांति उपस्थिति मिथ्या रूपादि विषयों का चिंतन किया करता है, उन विषयों का ध्यान करने वाला मन, ये मन को अवश्य रोकना चाहिए, मन के साथ इंद्रियों का भी संयम करना चाहिए, जिससे अपना जागृत होकर मुझे प्राप्त कर सके। भगवान ने ये बता रहे हैं कि जिसे इंद्रिय के विषयों का ज्ञान होता है, व्यक्ति ध्यान करता है, तो मृषा स्वप्न में दुखित है। जैसे सपना में कोई चीज दिखाई देती है लेकिन सारी वस्तुएं मिथ्या होती हैं, इसी तरह से मन विविध प्रकार के विषयों का चिंतन करता रहता है, तो मन का निरोध करना चाहिए और इंद्रियों को भी रोकना चाहिए। तो प्रकट ऐसे देखने में लग रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप मन से जो हमारा चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, मैं बहुत सुंदर हूं और मेरा बांसुरी बजाना और लीला करना, गोवर्धन धारण करना आदि, ये सब सपना जैसा है, भगवान ही नहीं बोल रहे हैं, यहां अनुवाद करने वाले ऐसे कहते हैं। सपना जैसा है तो जैसे जग जाता है कोई व्यक्ति तो सपना टूट जाता है, इसी तरह से अपने मन को नियमित करो, बस में करो और ये सब ध्यान आदि करना छोड़ दो, संसार का निरक चिंतन करो। इसका अर्थ है कि भगवान का चिंतन करना ये माया की वृत्ति नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाना है, आंख जहां तक जाती है, कान जितना शब्द सुनता है और मन जहां तक जाता है, ये सब माया के उत्पादन से, माया के विकार। लेकिन भगवान अद्भुत ढंग से प्रवचन कर रहे हैं कि मन का नियमन करना चाहिए। तो वास्तव में ये गोपी जनों को नहीं सिखा रहे हैं, एक सामान्य जीवों को, साधकों को सिखा रहे हैं कि अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाना चाहिए। भगवान में मन लगाना यही समस्त साधन की सफलता है। मन मना भाव, भगवान कहते हैं कि मुझमें मन लगाओ, जिसका अर्थ है कि भगवान का शरीर, भगवान की लीला, ये सब माया से परे हैं। और फिर भगवान कहते हैं एक दंत समामनायो योग सांख्य मनीषिणा त्याग तपो दमोह सत्यम समुद्रांता वापगा। और मन को बस में कर लेना समस्त साधनों का यही अंत है। जैसे नदियां चारों ओर से बह करके अंत में समुद्र में समा जाती हैं, चित्तवृत्ति को हटाकर चारों ओर से हम मुझमें लगा देना, यही है तपस्या का फल, यह है शास्त्रों का निर्णय, अष्टांग योग का भी यही फल है और ज्ञान योग का भी यही फल है। त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, सबका यही फल है। मन को बस में करना, मन को रोक लेना। जिस मन से स्वप्न की भांति उपस्थित मिथ्या रूपादि विषयों का चिंतन किया जाता है, उन विषयों का ध्यान, उस विषयों का ध्यान करने वाला मन को अवश्य रोकना चाहिए। मन के साथ इंद्रियों को भी संयम करना चाहिए, जिससे आत्मा जागृत होकर मुझे प्राप्त कर सके। साधनों का उपदेश करने वाला वेद, यम आदि का उपदेश देने वाला योग और तत्व का चिंतन करने वाला सांख, त्याग की सूचना करने वाला संन्यास, वानप्रस्थियों के लिए कहा गया तप, इंद्रियों का दमन, ब्रह्मचारियों के लिए वेदाध्ययन रूप सत्य, इन सबका अंतिम फल मनोविषय विषयों के लिए मन संयम ही है। जैसे नदियां जाकर अंत में समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे इन सब साधनों का परम फल मनोनिग्रह ही है। तो गोपी जन कहती हैं, मान लीजिए कहे भगवान से, हमारा मन तो पहले से ही आप में लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है, तो आप यहां से दूर क्यों चले गए? गोपियों के इस प्रश्न का अनुमान करके भगवान पत्र में लिखे हैं कि जो मैं तुम लोगों से दूर आ गया हूं, जब तो हम सब भवतीना में दूरे बढ़ते प्रिय दिशा, तुम्हारे आंखों का तारा अर्थात तुम्हारी आंखों के लिए परम प्रिय मैं, जो तुम्हारे आंखों से दूर आ गया हूं, तो इसी के लिए कि मन से निकटता प्राप्त करने के लिए, आंख से दूर हो गए हैं और मनसह सन्निकर्षार्थ मन से निकाय नैकट्य प्राप्त करने के लिए थे। गोपीजनों का मन या मेरा मन, दोनों की बात भगवान कहें, मनसह सन्निकर्षार्थ मदनु ध्यान काम्य, हे गोपियों आपका मैं अत्यंत प्रिय हूं, आपकी नजरों से दूर रहा हूं, इसका यह कारण है कि आपके मन को मेरी तरफ खींच लूं, इसका यह फल होगा कि आप निरंतर ध्यान करती रहें। प्रियतम विदेश में हो, अत्यंत दूर हो, तब स्त्रियों का मन जैसा वैसे पति में रहता है, ऐसा पति अगर साथ में रहे तो मन नहीं रहता है। भगवान अदीप सिद्धांत कह रहे हैं, यथा दूर चरे प्रेष्ठ मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम न तथा चेत सन्निकृष्ट क्षिगोचर। जब अपना प्रियतम दूर रहता है तब स्त्रियों का मन जैसे अविष्ट रहता है उसमें, वैसे निकट रहने पर नहीं होता है। निकट रहने पर तो लोग झगड़ा ही होता है, यही कहने का आशय। स्त्रीणाम चेत, स्त्रियों का मन जथा दूर चरे पृष्ठे अविष्ट वर्तते तथा न सन्निकृष्टे अक्षिगोचर। जब वो सामने रहता है, आंखों के सामने और निकट बिल्कुल, तो वैसा मन का आवेश नहीं रहता है। जब प्रियतम दूर हो जाता है तब तो मन आविष्ट होकर के रहता है। ये स्त्रियों का स्वभाव है भगवान का। तो प्रकट अर्थ तो ये हुआ कि जब मैं ब्रज में था तो रोज आप लोग झगड़ा ही करती रहती थी, माखन खाने पर मां से शिकायत करती थी, और दान घाटी में गोवर्धन जी के घाटियों में जब मैं दान मांगता था तो देती नहीं थी, रोज झगड़ा होता रहता था। इस सुनने में कुछ अर्थ लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। गोपियों का मन कहां बाकी था कि भगवान स्पेशल अपने में लगाना चाहते हैं, पहले से ही पूर्ण आवेश था। लेकिन भगवान सामान्य सिद्धांत की बात कह रहे थे, दूर होने से प्रेम बढ़ता है, निकट रहने से नहीं बढ़ता। तीन दिन की चार दिन, तीन दिन पहुना एकरा बाद केहू ना, केहू ना मतलब कुछ नहीं, और केहू ना मतलब हाथ से मारना है ना। स्वभाव है, अगर पति हमेशा साथ रहे आंख के सामने ही तो उतना प्रेम नहीं होता, दूर चला जाता है तब फोन चालू होता है। ये स्वभाव भगवान बता रहे हैं स्त्रियों को, निकट में रहने पर तो इस खुद पत्नी कहने लगती है, तुम यहां क्यों हो, जाकर कमाना चाहिए ना, कैसे घर चलेगा। तो सही ही बोलती है, लेकिन दूर हो जाने पर बहुत प्रतीक्षा होती है। स्त्रियों का स्वभाव है, तो तुम लोग भी एक स्त्री हो, अतः मैं दूर हो गया, प्रेम बढ़ाने के लिए दूर हो गया। वाह, कृष्ण के पास रहने पर प्रेम घटता थोड़े है, कृष्ण के पास रहने पर और प्रेम बढ़ता है। सांसारिक स्थिति को भगवान बता रहे हैं कि आपका प्रेम बढ़े और मुझमें चित्त लगा रहे, इसके लिए मैं आपसे दूर हुआ। मैयावेश मन कृतस्नम विमुक्ता से व्यक्तिजत अनुस्मरण के माम नित्यम अचरण माम अवाप्य था। इस तरह से मुझमें मन लगा करके मेरे लिए रोती रहोगी, तब बहुत शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, यदि आप सब प्रकार के विषयों की दस एकादश द्वादश प्रकार की वृत्तियों से रहित संपूर्ण विशुद्ध मन मुझमें लगाकर नित्य मेरा स्मरण करते रहेंगे तथा तब बिना विलंब मुझे प्राप्त करेंगे। निकट से चले गए दूर और दूर से मिलने का उपाय बता रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस रस को बहुत पसंद करते थे। भगवान श्री कृष्ण का दो तरह से भजन होता है, विप्रलंब और संभोग। संभोग का मतलब होता है भगवान के साथ रहना, देखना, और विप्रलंब का अर्थ होता है वियोग। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी वियोग रस का ही ज्यादा आस्वादन किए। तो भगवान ने दूर होकर के अपने मिलने का उपाय बता रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहे हैं बहुत अच्छा, कि मैं जब रास विहार कर रहा था, बांसुरी बजाया, तो कुछ ब्रजगोपियों को मेरे पास आने का अवसर नहीं मिला। घर के लोग किवाड़ में बंद कर दिए, बाहर से सांकल लगा दिए, तो उनको मेरे पास आने का अवसर नहीं मिला। तो वे विरह की भावना से इतना मेरा गाढ़ चिंतन की, उन्हें स्पिरिचुअल देह मिल गया, दिव्य देह मिल गया, स्वरूप वो मेरे पास पहले आ गई। जो गोपियां रासलीला में भाग ली थी, पहुंची थी, उनसे भी पहले ये लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। तो अब तक गोपियों को इस बात का बड़ा शोक था कि हमारी वो सखियां नहीं आ पाई, घर में बंद कर दी गई, उसके लिए बड़ा अफसोस था। लेकिन जब भगवान ने कहा कि वे गाढ़ चिंतन की, तो उससे उनका प्राकृत शरीर बंधन समाप्त हो गया और भाव शरीर से वो मुझे प्राप्त कर गए। इस बात से गोपियों को बहुत खुश हुआ कि हमारी सखियां प्रियतम श्याम सुंदर के पास आ गई थी रासलीला में। तो भगवान बताए कि इस तरह से तुम चिंतन करोगी, हमेशा समाधि में रहोगी, मेरा ही चिंतन रहेगा लीला का, रूप का, तो शीघ्र पा जाओगी। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन 10 श्लोकों से कृपा निधान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया जिससे ब्रज वनिताओं के दोष निवृत्त। क्या अनुवाद किया है सुन। एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य ब्रजजोषितः ऊचु रुद्धवम प्रीतास्तत्संदेश स्मृति। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे महाराज, इस तरह से प्रियतम आदिष्टम, प्रियतमस्य आदिष्टम उपदेशम आकर्ण्य, प्रियतम के उपदेश को सुनकर के ब्रजजोषितः प्रीता प्रसन्न हुई। यह बात सुनकर के कि हमारी सखियां श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी उस समय, इसे प्रसन्न हुई। तो वे तत्संदेशागत स्मृति, कृष्ण की स्मृति बहुत अधिक बढ़ गई, या अपने सखियों की स्मृति भी बढ़ी, तो वे सब उद्धव जी से कहने लगे। गोपीजनों के उद्गार हैं सुनने के बाद तुरंत। जो पाए हरि हृदय मांझ, जो पाए उद्धो हृदय मांझ हरि। भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में हूं, सब जगह हूं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्री सूरदास जी के पद है। जो पाए कहाँ है वो है साठ अल्फाबेट के अनुसार बनाना चाहिए तुरंत प्राप्त होगा। गोपीजन इस बात से दुखी हुई कि उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी के द्वारा भगवान संदेश भेजे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। हृदय में रहते हैं गोपियों को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। हृदय में है, हम इतना रो रही हैं, इतना दुख हो रहा है, फिर भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। हृदय में होते तो हमारा दुख सह नहीं सकते थे, जरूर प्रकट हो जाते। जो पै उद्धव हृदय मांझ हरी, तौ पै इति अवज्ञा उन पर कैसे सही पड़ी। तो हमारी इतनी अवज्ञा, इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं जब हृदय में ही है। आप साथ बोलते हैं ना, हृदय में है ना। उद्धव जी तो बकाने लगे देखकर। ऐसे दुनिया के लोग सुन लेते हैं भगवान घट घट व्यापी हैं, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। गोपियों तो कोई थोड़ा विश्वास हुआ कि जब भगवान के सखा कह रहे हैं कि कृष्ण हृदय में है, लेकिन हृदय में होते हुए भी वे प्रकट नहीं हो रहे हैं, इस पर आश्चर्य हो रहा है। जो पै उद्धव हृदय मांझारी, तो पै इति अवज्ञा उन पर कैसे सही पड़ी। कैसे हमारी अवज्ञा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। जब वृंदावन में आग लगी थी, दवानल लगा था, तब ही दवा द्रुम दहन न पाए। दवा मन दौ, जब वन में आग लगी थी तो एक वृक्ष भी नहीं जला। तो और इस समय सारा शरीर जल रहा है विरह में। सुंदर श्याम निकष उड़ते हम शीतल क्यों न करी। हमारा शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है, यहां से निकल करके खुद क्यों नहीं भागे। अगर हृदय में होते तो इतना ताप वो कैसे सह सकते हैं। विरह का इतना बड़ा ताप है, हमारे ताप पूर्ण हृदय में कैसे भी हैं, वहां से भाग क्यों नहीं गए। और बाहर निकल करके हमें शीतल क्यों न करिए, हमको क्यों नहीं शीतल कर रहे। उस समय इतनी कृपा किए कि एक वृक्ष भी नहीं जला वृंदावन में, ध्रुम भी नहीं जला। और इस समय हमारा देह जल रहा है, इतना निकट है। नहीं नहीं, कृष्ण हृदय में नहीं। और हृदय में होते तो इतनी वर्षा हो रही है हमारे आंखों से, ये वास्तव में इंद्र वर्षा कर रहा है। इंद्र रिसाए बरस नयनन मग, हमारे नेत्रों के रास्ते से इंद्र वर्षा कर रहा है। घटतन एक घड़ी, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए भी वर्षा, आंसू की वर्षा रुक नहीं रही है। भींजत शीत भीत तन कांपत, हम भींज रही हैं रो रो करके, और ठंडा से शरीर कांप रहा है जल गिरने से। रहे गिर क्यों न धरी, ये इतना निकट है तो क्यों नहीं गोवर्धन धारण करते हैं। उस समय तो इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए थे, और इतना हम पर वर्षा हो रही आंसू की, और शरीर कांप रहा है, थरथर कांप रहे हैं, तो फिर गिरी क्यों न धरी। उस समय इंद्र वर्षा कर रहे थे, थोड़े से दुख की संभावना देख करके हमारे प्रियतम पहाड़ उठा लिए, गोवर्धन उठा लिए। और इस समय हम इतना दुखी हैं, हम भींग रही हैं, शरीर कांप रहा है, फिर भी क्यों नहीं प्रकट होते। करकम कर्ण दर्पणले दो अवय ही अनख मरी। प्रियतम श्याम सुंदर के उस व्यवहार को देख करके, इस व्यवहार को कितना क्षीण हो गई है। हमारे हाथ की चूड़ी बिल्कुल ढीली पड़ गई है, हमारी कलाई बिल्कुल पतली हो गई है, कंकन दर्प कर कंकन दर्पण ले दो, हम हाथ में दर्पण लेकर के देखती हैं अपने मुख को, कितना मुख दुबला हो गया है हमारा, फीका हो गया है, और कंकड़ देखती हैं तो कंकड़ हाथ से निकल रहा है, चूड़ियां बिल्कुल ढीली हो गई है। कर कंकन दर्पण ले दो, अब यही अनख मारी, हम तो दर्पण देख करके कृष्ण के विरह में इतना रोई हैं और इतनी दुबली हो गई हूं कि इसको देखती हूं और हाथ को पतला देखती हूं, तो इसी अनख अनख मतलब अयोग्य बात को अर्थात क्रोध से हम मर रही हैं। कभी प्रियतम हमारा मुंह देखते तो वे यहां से जाते ही नहीं, अवश्य हमको सुखी करते। करकम कन दर्पण ले दो, अब यही अनख मरी, ये तो मान सुर सुन जोग विरहिन विरह जरी विरह धरी जरी। हे उद्धव, आप इस पर विश्वास कीजिए। एक बात मैं कहती हूं, आप विश्वास कीजिए कि आपका यह योग हमारे लिए नरक है। भले विरह भरा रहे श्याम सुंदर का, हम विरह में मरेंगे ठीक, लेकिन आपका योग बिल्कुल बेकार है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य प्रजोषित ता ऊचु रुद्धवम प्रीता तत्संदेशा गतस्मृति। भगवान की परम प्रियतम श्याम सुंदर की बहुत स्मृति आने लगी और श्री गोपियां इस प्रकार बोली कि गोपियों का जो ये उद्गार है, इन्हीं उद्गारों को भक्त कवियों ने विस्तार से कहा है। गोपियां कहती हैं, गोप्य उचु का अर्थ है गोपियां बोली। दिष्ट्या हितो हतः कंसो जदूनाम सानुगोभ कृत दिष्ट्याप्ते लब्ध सर्वार्थे कुशल्यास्ते चितो धुना। बहुत अच्छा है, बहुत भाग्य की बात है कि कंस मारा गया, बहुत भाग्य की बात। जदवंशियों का भाग्य या ब्रजवासियों का या हम लोगों का, सबका भाग है, पूरे संसार का बहुत बड़ा भाग्य है कि अहित शत्रु कंस हत, जो जादवों का वैरी था कंस वो मारा गया। जदूनाम अहित, जादवों का अहित, जादवों को बहुत सताया था भगवान के जन्म के पहले, बहुत दुखी थे। बाद में भगवान ने सबको बुलाया, कंस का वध करके तब जादवों को बुलाया, जहां तहां भाग गए थे। तो बहुत अच्छा हुआ जदूनाम अघकृत, जादवों पर अत्याचार करने वाला पापी कंस मारा गया, बहुत अच्छा हुआ। इसका अर्थ है कि समाचार में उद्धव जी ने बताया दिष्टाप्त लब्ध सर्वात है कुशल्यास्ते चितोधुना, या वो खबर तो कंस के वध की बात तो स्वयं नंद बाबा आदि ने ही आकर के बताया होगा। ब्रज बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, इस समय श्री कृष्ण मथुरा में ही है, मेरे प्रियतम मथुरा में ही है, बहुत अच्छा है, और कुशली आस्ते कुशल से है, और अपने बंधु बांधवों के साथ हैं, मर्यादों के साथ हैं। आपते लब्ध सर्वार्थ, आपते आप्त का अर्थ है कि वे जो जदुवंशी इनको अपना मानते हैं, तो अपने संबंधियों के साथ जिन संबंधियों को सब कुछ मिल चुका है, जो लब्ध सर्वार्थ हैं, उनका मनोरथ पूरा हो गया है, वे अच्छे से हैं और सुख से हैं, और सुखी जादवों के बीच में श्री कृष्ण कुशल से हैं, बहुत अच्छा। अच्युत, जो अच्युत हैं, जिससे प्रेम करते हैं तो उसको कभी छोड़ते नहीं, अच्युत का स्वभाव। क्या करें, वसुदेव जी उनको कहते हैं कि तुम मेरे भी पुत्र हो, इत्यादि कह करके लोग बांध लिए हैं, तो इसीलिए च्युत नहीं हो रहे हैं। वसुदेव जी या जादवों के चंगुल से छूट नहीं रहे हैं, च्युत नहीं हो रहे हैं, इसलिए अच्युत अधुना इस समय हमारे प्रियतम श्याम सुंदर कुशल से हैं, अपने समस्त संबंधी जादवों के बीच में है, ये भी सुखी हैं और ये भी सुखी हैं, बहुत अच्छा, बहुत भाग्य की बात। अब कृष्ण के बारे में डायरेक्ट पूछती हैं, नहीं रहा गया था, कुशल की बात सुन करके खुश हुई, अब पूछती हैं। कथित गदा ग्लज सौम्य करोति पुरजो सीताम प्रीति न स्निग्ध सब बीड़ा हासोदारे क्षणार्चित। हे सौम्य, हे उद्धव जी, आप निष्कपटता की मूर्ति हैं, चंद्रमा जैसा, सोम जैसा आपका शीतल स्वभाव है। हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बोले ही नहीं हैं झूठ, जो झूठ ना बोले वो है सौम्य। आप में धूर्तता बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए, श्री कृष्ण हम लोगों से जैसा प्रेम करते थे वैसा मथुरा की स्त्रियों से करते हैं कि नहीं? यही पहला समाचार पूछे कृष्ण के बारे में, ये पूछे। कचित गदाग्रज, गद के बड़े भाई वसुदेव जी के एक पुत्र का नाम गद है, लिखा गया भागवत, देवकी जी से नहीं, उनकी और माताओं से, मौसी से। तो हमेशा श्री कृष्ण को गदाग्रज कहा जाता था, गद का अग्रज श्री कृष्ण। श्याम सुंदर, करोति पुरजोषितां प्रीतिम, प्रीतिम करोति, कैसी प्रीति? नह, नह कार्य अस्मासु योग्यां प्रीति, जो प्रेम हमसे करना चाहिए, हमसे करते थे वैसा ही प्रेम क्या पुरजोषितां करोति? पूरे कार्य मधुपुरी, श्री मथुरा, तो मथुरा की स्त्रियों से वैसा ही प्रेम करते होंगे ना, अथवा प्रश्न है कि वैसा ही प्रेम करते हैं क्या? मथुरा की स्त्रियां बड़ी चतुर हैं, वो स्निग्ध सब्रीड़ हास, बहुत सुंदर ढंग से वो हंसती होंगी, उनके हंसी में स्नेह होगा, स्निग्ध, सुखी हंसी नहीं, स्निग्ध हंसी हंसती होंगी, और थोड़ी लज्जा के साथ और उदार आनंद देने वाली चितवन। चितवन द्वारा, हंसी द्वारा श्री कृष्ण अर्चित होंगे, अर्चित होते होंगे ना। मथुरा की स्त्रियों के स्निग्ध लज्जा भरी हास और उदार चितवन से श्री कृष्ण का सम्मान होता होगा, अर्चित श्री कृष्ण की पूजा करती होंगी मथुरा की स्त्रियां। कैसी पूजा? देखकर मुस्कुराती होंगी कृष्ण को, देखती होंगी, हंसती होंगी, और कृष्ण अवश्य उनके हंसी को, चितवन को, और उनके साथ वार्तालाप करने में आनंद पाते होंगे। श्री गोपीजनों को मिथ्या सब कुछ हो रहा है, भगवान किसी भी स्त्री से वहां बात नहीं किया, किसी पर देखे भी नहीं। अब श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि मथुरा के राजपथ पर भगवान जा रहे थे, कितनी स्त्रियां क्या क्या मनोरथ कर रही हैं। रहतन तो राख लेती मन के अटरिया में, आपस में बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन श्री कृष्ण अभी किसी स्त्री से खास बात नहीं किए। पर श्री गोपीजनों का यह भाव है, वो अपने भाव की छाया सभी स्त्रियों में देखती थी। अवश्य श्री कृष्ण पर भी देखती होंगी और श्री कृष्ण भी उनको देखते होंगे मुस्कुरा करके। ये भी प्रश्न ही एक प्रकार का हो सकता है कि क्या मथुरा की स्त्रियां उन पर मुस्कुरा करके देखती हैं, चूंकि ये प्रियतम के सखा है, कृष्ण में और उद्धव जी में भेद नहीं है, इसलिए इतना फ्रैंक बात कर रहे हैं। अब साथ साथ रहते हैं तो जरूर आप तो देखते ही होंगे कृष्ण किधर देख रहे हैं, किसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मथुरा की स्त्रियों को देख करके हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, और तिरछी चितवन से देखते होंगे, और स्त्रियां भी इनको देख करके हंसती होंगी। और हम लोगों से जैसे प्रेम करते थे वैसे क्या मथुरा की स्त्रियों से करते हैं, जरूर करते होंगे। अपने आप भाव में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, करते ही होंगे। तो कोई दूसरी सखी कहती है उद्धव जी ने जैसे नकारा, नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा होगा। तब कहती है दूसरी सखी कहती है कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वर्जोषिता नानुबद्धे तो तद वाक विभ्रमेश्चानुभाजित। ये तो हो ही नहीं सकता है कि श्री कृष्ण उनके बात मीठी मीठी बातों में और चितवन आदि में फंस नहीं गए होंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कैसे नहीं फंसे? कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वर्जोषिता, श्री कृष्ण श्रेष्ठ सुंदरी ज्योति स्त्रियों के लिए बड़े प्रिय हैं। प्रियश्च वर्जोषिता, श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए बड़े प्रिय हैं। यहां वर का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ है सुंदरी ज्योति। सुंदरी और ज्योति मथुरांगनाओं के हाव भाव से, उनके विभ्रम का अर्थ है उनके चितवन से, हंसने से, और खास करके जब श्री कृष्ण बोले होंगे, ये स्त्रियां जब श्री कृष्ण से बात की होंगी तो उनके मीठी मीठी बात से और उनके चितवन आदि से क्यों नहीं अनुबद्धेत, नहीं बंधे होंगे ऐसा तो माना नहीं जा सकता। ये जानते हैं जैसे हमारे वाक्य बोलने से और हमारे चितवन से श्री कृष्ण हमारे बस में रहते थे, वैसे ही मथुरा की स्त्रियां उनको अपने बस में कर ली होंगी, इसीलिए तो नहीं आते हैं। कहां भगवान अपने पढ़ाई लिखाई में पड़े थे और माता पिता के सुख के लिए रह रहे थे, तो ब्रज की स्त्रियां भी अनुमान करें कि वो स्त्रियों के चक्कर में फंस कर नहीं आ रहे हैं। अनुभाजित, भाजन का स्वागत, उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया होगा, खूब हंस हंस करके मुस्कुरा करके देखती होंगी और बातें करती होंगी, क्योंकि श्री कृष्ण रति विशेषज्ञ हैं। रति का अर्थ होता है प्रेम विशेष, कृष्ण में रत हो जाना। वास्तव में श्री कृष्ण से कौन कितना प्रेम करता है इसको श्री कृष्ण सब समझते हैं, और रति विशेषज्ञ उनको कहते हैं, प्रेम के स्पेशलिस्ट हैं भगवान, विशेषज्ञ। श्री कृष्ण सब समझते हैं कि कौन उनसे प्रेम करता है, तो उसके प्रेम का बदला अवश्य चुकाते हैं। भगवान प्रीति के विशेष ज्ञाता है, तो क्यों नहीं वे मथुरा की स्त्रियों के हाव भाव में बंध जाएंगे। तो इसके बाद दूसरी सखियां बोलती हैं, उद्धव जी बैठे हैं सभा में और गोपियां भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह से पूछती है। भिन्न भिन्न बातें पूछी जा रही है। वे मथुरा की स्त्रियों से अवश्य प्रेम करते होंगे, वैसे तो हमारे प्रियतम धीर गंभीर हैं, लेकिन वो स्त्रियां धीर गंभीर नहीं रहने देंगी। वो सिटी में रहने वाली स्त्रियां बहुत चतुर हैं, जब गांव की स्त्रियों के चक्कर में कृष्ण इतने पड़े थे यहां ब्रज में, तो बाप की बाप, वो पढ़ी लिखी स्त्रियां युवती किस तरह से कृष्ण को बांध ली होंगी। अपने भाव का आरोपण सब जगह कर रहे हैं। तो दूसरी सखियां बोलते हैं, अपिस्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्य स्वैर कथांतरे। हे साधु, हे निष्कपट उद्धव जी और हे सत्यवादी, आप ये बताइए, पुरस्त्री नाम गोष्ठी मध्य जब मथुरापुर की स्त्रियों के गोष्ठी में श्री कृष्ण कभी बैठते हैं रहते हैं, तो क्या कभी न स्मरति मथुरा के स्त्रियों की सभा में क्या हम लोगों को कभी याद करते हैं? वैसे तो याद नहीं करते होंगे, लेकिन सभा में जब होते होंगे तो शायद स्त्रियों को देख करके कभी हम लोगों की याद करते होंगे कि ब्रज में भी हमारा कोई संबंध था कुछ गोपियों के साथ। क्या हमारी याद करते, चर्चा करते हैं? गोविंद, गोकुलेंद्र जो गायों को चराए यहां पर और गायों की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन भी उठा लिए, गोविंद उसी समय नाम पड़ा था भगवान का, इंद्र ने नाम दिया, तो इसीलिए गोविंद कह रहे हैं। जो हम लोगों से इतना प्रेम करते थे पहले, हमारे लिए गोवर्धन उठा लिए, तो क्या कभी प्रस्तुत है कोई चर्चा चलने पर, चर्चा चलने प्रस्तुत होने पर कोई चर्चा करे कि यहां की स्त्रियां ऐसे होती हैं, यहां की स्त्रियां ऐसे होती हैं। मान लीजिए मथुरा की स्त्रियां आपस में बात करें, तो क्या कभी श्री कृष्ण को उस समय हम लोगों की याद आती है? स्त्रियों की बात चलती है तो स्वाभाविक है, बात होती जाएगी, ये नेता ऐसा है, ये नेता ऐसा है। जब नेताओं की बात होने लगती है तो चर्चा करता ही है आदमी, है ना? जैसी बात होती है इसको प्रस्तुत कहते हैं। कोई प्रस्तुत प्रसंग आ गया तो प्रसंग आने पर क्या श्री कृष्ण हमारी याद करते हैं? गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम, वैसे तो हम तो ग्राम्य, हम तो गांव की हैं, अपने में हीन भावना कर रहे हैं गोपियां, हम ग्राम्य गांव की हैं। स्वैर कथांतर, स्वैर कथांतर का अर्थ है कि कभी जब स्वच्छंद चर्चा चलती है, कथा कहते हैं कृष्ण, कोई बात करते हैं कि यहां की ऐसी सुंदरी स्त्री है, वैसी है, तो उस संदर्भ में क्या हम लोगों की याद करते हैं? अरे वो सभा में बैठे ही नहीं याद करने की बात, ये तो गोपी जनों का भाव है अपना। तो उद्धव जब क्या करें, वो चारों तरफ से प्रश्न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ अभी बोल नहीं रहे। अच्छा छोड़िए, ठीक है आप उस पर मत बोलिए। क्या कार्तिक के उस आश्विन पूर्णिमा की याद करते हैं, कुवार की पूर्णिमा जिस दिन हम लोगों के साथ वृंदावन में नाचे थे, रास किए थे, उस रात की, उस उन रात्रियों की कभी याद करते हैं क्या? यानी सब बहुवचन में है, साथ कई रात्रि में भगवान ने रासलीला किया था। ताह किम निशाह स्मरत जासु तदा प्रिया भील वृंदा बने कुमुद कुंद शशांकरम्ये रेमे कोण चरण नु पुलरास गोष्ठ्याम अस्माभिरीदित मनोज्ञ कथः कदाचित। उद्धव जी, कदाचित किसी समय, पुरुषों के सभा में रहते होंगे तो हमारी रासलीला की याद नहीं करेंगे, रख दीजिए बाद में। तो श्री कृष्ण कभी, कदाचित का यह अर्थ है कि कभी आपके साथ एकांत में होते होंगे, आप अंतरंग मित्र हैं तो कभी न कभी चुड़ी हो सकता है लज्जा अनुभव करते होंगे, मथुरा की स्त्रियों के सभा में हम लोगों की चर्चा करने में लज्जा का अनुभव करते होंगे, लेकिन कभी एकांत में कदाचित बिल्कुल लीजर टाइम में जब खाली रहते हैं तो उस समय क्या उन रात्रियों की याद करते हैं जिन रात्रियों में हमारे साथ वे नाचे थे, नाचते रहते थे, जिन रात्रियों ताह निशाह किम स्मरति, उन रात्रियों की अनिर्वचनीय रात्रियां, भगवान ने जिन रात्रियों में रास किया था उनका उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो रात, उस रात में, उन रात्रियों में श्री वृंदावन धाम इतना अच्छा लगता, सब कुछ उज्ज्वल, चंद्रमा का प्रकाश उज्ज्वल, कुंद का पुष्प उज्ज्वल, सब कुछ उज्ज्वल, और उस रात्रि में दिन से भी अच्छा प्रकाश होता था, शीतल प्रकाश। जासु जिन रात्रियों में तदा उस समय, आश्विन पूर्णिमा या कार्तिक में भी कई, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य भी पूर्णिमा, वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये, जिस समय वृंदावन कुमुद कुंद और शशांक चंद्रमा से अत्यंत रम्य हुआ था, चारों ओर फूल की सुवास आ रही थी और चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति से उगा हुआ था और भगवान गोपीजनों का बांह पकड़ पकड़ करके नृत्य किए थे, रे में बहुत प्रसन्न थे, बहुत सुखी थे श्याम सुंदर और रम रहे थे, कोण चरण अपने चरण को बजाते हुए नूपुर, उनके चरणों में नूपुर झनझन बजते थे और बहुत नृत्य करते थे। तो कोण चरण नूपुर रास गोष्ठियां, उस रास गोष्ठी में, रास लीला में भगवान अपने चरणों से नूपुर बजा रहे, चरणों में लगे हुए नूपुर बजा रहे थे, नाच रहे थे। अस्मा विरीडित मनो की कथा, हम उनकी लीलाओं का, उनके सौंदर्य का गान कर रहे थे उच्च स्वर से, श्रीकृष्ण नाच कर रहे थे, उस समय श्रीकृष्ण के सौंदर्य की बात हम लोग गा रहे थे। उस उन रात्रियों के क्या श्याम सुंदर कभी याद करते हैं? कदाचित कभी, जब आपसे एकांत में रहते होंगे तो कभी कभी चर्चा करते हैं क्या? उद्धव जी तो मग्न हैं इस प्रेम सुख के का दर्शन करके सुनकर, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो दूसरी सखियां कहती हैं, अप्येष्यति ह दासारह तप्तः स्वकृतया सुचा संजीवयन्नो गात्रे जथेन्द्रो बलमुदय। हे दासारह, हे जदवंशी उद्धव जी, हम लोग श्री कृष्ण के विरह के दावानल में झुलस रहे हैं, क्या कभी हम लोगों की याद करते हैं? कभी ये याद करते होंगे हमारे लिए उन गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे विरह में वे रो रही हैं, मर रही हैं, ऐसी याद करते हैं कि और क्या कभी आएंगे वृंदावन। अपि एष्यति इह वृंदावने, एष्यति आएंगे क्या, कभी आने की चर्चा आपसे करते हैं कि चलना है वृंदावन, बहुत दिन हो गया, जरूर आपसे बात करते होंगे, तो क्या कभी आपसे ये बात कहे हैं कि हम आएंगे। और आकर के हम लोगों को शीतल करेंगे, जैसे इंद्र झुलसे हुए वन को, फूल फुलवारी को, पौधों को हरा भरा कर देते हैं। अम्बुदय बादल से वर्षा करके जैसे वन को हरा भरा कर देते हैं, ऐसे क्या श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे और अपने लीलावृत की वर्षा से हमको हरा भरा करेंगे। हम मर रहे हैं उनके विरह में, तो जैसे गर्मी के दिन में जेठो बैसखवा में लहरे लुअरिया फुलवरिया मुरझाई गई हो रहा है, जेठ और बैसाख अषाढ़ तक कितना तप्त होता है वन प्रदेश, कई लताएं छोटे छोटे पौधे आदि झुलस जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है वर्षा काल में तो फिर वन हरा भरा हो जाता है। क्या श्रीकृष्ण हमको फिर हरा भरा करेंगे, इस विषय में घनानंद जी का एक कविता है, उसको हम बताते, उसको गा करके तब तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, भगवान से निवेदन करती हैं, या उद्धव जी से कहते हैं कि आप जाकर कहिएगा कृष्ण से, रूप उजी आरे जान प्राण न के प्यारे कब, रूप उजी आरे जान करोगे जुनैया दैया विरह महात्मय, सुखद सुधाते हँसी हेरनी पीवाय पिए, सुखद ये हैरानी नहीं है, हैरनी है, सुखद सुधाते हँसी हेरनी पीवाय पिए, सुखद जीवहि जीवाय मारी हौ देग से जमै, सुंदर सुदेश आँखे बहुरी बसाय आय, सुंदर सुदेश आँखे सिंह छबिले जैसे भूलसी ही गमाए, ये गलत, बसिंह छबिले जैसे भूलसी ही गमाए, होई है सौ घरी भाग घरी आनंद घन, होई है सौ घरी रसही बरस लाल करी हरिहम, रसही बरस लाल करी हरिहम, इसका अर्थ है गोपीजन करें कि रूप उजियारे हे प्रियतम जान मन हे सर्वज्ञ, आपका रूप उजाला, आपका रूप जगमग कर रहा है, बहुत सुंदर है और हमारे प्राणन के प्यारे, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कब करोगे जुन्हैया दया विरह महात्म, इस विरह के महात्म में, महा अंधकार में आप जुन्हैया कब करेंगे, कब प्रकाश करेंगे? जब महा अंधकार छाया रहता है और चंद्रमा उगता है, इसको जुन्हाई कहते हैं। कब करोगे जुन्हैया दया विरह महात्म, विरह का महात्म अंधकार छाया हुआ है, कब प्रकाश करेंगे? और सुखद सुधाते हंसी हेरनी पिवाए पिए, और सुधा से भी, अमृत से भी अधिक सुखद हंसी हेरनी पिवाए पिए, कब आएंगे और हंस करके हम पर देखेंगे, हंसते हुए हमको देखेंगे, हंसी हेरनी, ये हेरानी नहीं हेरनी, आपकी चितवन हम कब देखेंगे, आप हंस करके हम पर कब देखेंगे? पिए जी अही जीवाए मारी हो देव सब से जमाए, आप हमारे जीव को, प्राण को कब बचाएंगे, जीव को कब जीवा करके, और हमारे में जो उद्वेग है, हमारे पास दुख है या जमराज की तरह, इसको आप कब मारेंगे? जी मारी हो उद्वेग से जमाए, उद्वेग के उद्वेग जो है वही जम है, यम है, इसको कब आप मारेंगे? सुंदर सुदेश आंखें बहुरो बसाए आए, सुंदर सुदेश, सुदेश कहते हैं शरीर को, आप अपने सुंदर शरीर को हमारे आंखों में कब ठीक बसाएंगे, हमारे कब देखेंगे, हमारे आंखों में अपना सुंदर शरीर कब बसाएंगे? और बसिहो छबीले जैसे हुलसी हिये रमे, जैसे इस समय आप हमारे हृदय में हुलस बस रहे हैं, आपकी सुंदर छवि बसी है, ऐसे आंखों के सामने आप कब आएंगे? बसिहो छबीले जैसे हुलसी हिये रमे, जैसे आप विहार करते हुए हृदय में बस रहे हैं, ऐसे आकर के आंख में कब बसेंगे? छवि ले मतलब परम सुंदर छवि से जो श्री कृष्ण हुई है सौ घरी वही है, व में हलन, ह में हलन था, वही है सौ घरी, क्या हमारे जीवन में वह घड़ी आएगी, वो समय आएगा भाग उघरी आनंद घन, जिसमें हमारा भाग्य खिल जाएगा, वो अवसर क्या आएगा जिसमें हमारा भाग्य खिलेगा? और हे आनंद घन, हे श्री कृष्ण आनंद के बादल हैं, और कवि का नाम भी आनंद घन है, हे आनंद के घन, आप कब लीलामृत की वर्षा करेंगे, रस बरसाएंगे और हमको हरि करेंगे? मैं विरह से मर रही हूं, उस हमको कब हरि करेंगे? एक करियाओं के बदले देखी हो शब्द है, जो भी अच्छा लगे गाना चाहिए।
रूप उजियारे जान प्राणन के प्यारे, कब रूप उजियारे जान करोगे जो नैया दैया विरह महात्म, सुखद सुधाते हंसी हेरनी पिवाय पिए, सुखद सुधाते हंसी जीवही जीवाय मारी हौ देग से जमै, सुंदर सुदेश आंखे बहुरी बसाय आय, सुंदर सुदेश आंखे बहुरी बसाय। दसी हो छबिले जैसे हुलसी रमै हई है सोऊ घरी भागऊ घरी आनंद घन सौ घरी भाग घरी आनंद घन सौ रस ही बरसी लाल करी हरी हमें रस ही बरसी लाल रस ही बरसी लाल करी हरी हमें
कोई गोपी इस तरह से बोल रही है उद्धव जी से कि क्या कभी वे आएंगे और हमें हरा भरा करेंगे जैसे इंद्र बादल द्वारा वर्षा करके वन को हरा भरा करते हैं। तो कोई दूसरी गोपी बोल रही है जो बहुत मानवती थी, भगवान से बार बार मान करती थी, तो वो बोल रही है तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो इनसे, कृष्ण क्यों आएंगे, जानती नहीं हो आएंगे कैसे, इतना भोले भाले होकर पूछ रही हो, कस्मात कृष्ण यहां आती प्राप्त राज्य हता ही तो नरेंद्र कन्या उद्वाह प्रीत सर्व सुहृद विपत्ति, कृष्ण अब क्यों यहां आएंगे, उनको यहां क्या लाभ है, कस्मात कृष्ण यह आयाती यह वृंदावने ब्रजम कस्मात आयाती क्यों आएंगे, तुमको पता है कि नहीं, प्राप्त राज्य अब उनको राज्य मिल गया है, मथुरा का राज्य मिला है, तो राज्य भोगना छोड़ करके गाय चराने आएंगे, इतना समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से मत पूछो, उद्धव जी सब सुन रहे हैं बात, कस्मात कृष्ण यहां आती कृष्ण क्यों यहां आएंगे, प्राप्त राज्य हता ही तो उनके सब शत्रु मारे गए, उनका अहित कंस भी मर गया, ये तो नहीं मारे भगवान ने उसको मार दिया, कृष्ण ने नहीं मारा, अपने प्रियतम पर दोष नहीं लगा सकती हैं, वो मर गया, अब कोई दुख रहा नहीं, जागरों के समाज में है और राज प्राप्त हो गया है, राज प्राप्त हो गया और नरेंद्र कन्या उद्वाह्य अब राजाओं की कन्याओं से विवाह कर लिए हैं, विवाह करके और प्रीत सर्व सुहृद मृत सभी संबंधियों और बंधुओं के साथ घिरे हैं, तो जहां अपने सारे स्वजन सुखी हैं उनके अपने संबंधी बंधु बांधव नहीं, बंधु बांधव तो ब्रज में रहते हैं, उनके सारे संबंधी संबंधी मतलब जो कई विवाह कर लिए हैं तो कितने साले उनके घर में आते रहते होंगे, मथुरा में आए होंगे मिलने के लिए, या ससुर और भी जितने हैं संबंधी बढ़े हुए हैं इनके, कुछ वसुदेव जी के संबंधी और कुछ इनके पत्नियों के संबंधी, अभी भगवान ने कोई विवाह नहीं किया है, विवाह द्वारका में होगा प्रथम बार रुक्मिणी जी से, लेकिन ये कल्पना है गोपियों, नरेंद्र कन्या उद्वाह्य तुमको पता है, नरेंद्र मतलब मनुष्यों में इंद्र श्रेष्ठ, राजाओं की कन्याओं से उनका विवाह हो गया और बहुत प्रीत बहुत प्रसन्न है, अब क्या सोचते हो कि आकर के हम गाय बकरी चरा रहे हैं, वो नहीं आने वाले हैं, सर्व सुहृद वृत प्राप्त राज्य हताहित प्रीत सर्व सुहृद वृत इस समय बहुत प्रसन्न है, राजाओं की कन्या से विवाह, राजकुमारियों से। जब इतने वे सुखी हैं तो किमस्मा भीर बनव को भीर अन्या भीर व महात्मन श्रीपते राप्त काम से क्रिय तार्थ कृतात्मन। जब इतने सुखी हैं, राज्य मिल गया है, शत्रु सब मर गए हैं, राजाओं की कन्याओं से विवाह करके प्रसन्न हैं, समस्त सुहृद बंधु बांधवों से घिरे हैं, रहते हैं उनके साथ, तो किमस्मा भीर बनव को, बनव को भी बन ही जिनका ओक है, ओक मैंने घर, और तुम्हारे पास और हमारे पास क्या है, हम तो वनवासिनी हैं, वन में रहने वाली, तो हम वनवासिनी वन में रहने वाली स्त्रियों के पास वे क्यों आएंगे। अस्मा भीर बनव को भी, या अन्य भीरवा जो वन में नहीं रहती हैं, घर में रहती हैं, अच्छे घर में रहती हैं, तो उनसे क्या मतलब है कृष्ण को। कृष्ण महात्मा हैं, महान चित्त है उनका, महान मन है। अरे वो श्रीपति हैं, श्री के भी पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, आप्त कामस्य, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हैं। तो हम लोग या अन्य स्त्रियां उनका क्या अर्थ साधित कर सकते हैं। क्रियतार्थ कृतात्मा, वे कृतात्मा है, ऐसे भगवान का तो ये गुण है ही कि वे पूर्ण मनोरथ हैं, आत्मा राम है। उनको किसी स्त्री से क्या आवश्यकता है। लक्ष्मी जी पर देखते ही नहीं है, रहती है बेचारी उनके चक्कर में पड़ी है, सेवा करती रहती है, लेकिन कभी पूछे नहीं लक्ष्मी जी। महात्मा कहकर मान लो बहुत भारी बैरागी हैं, कि मस्मा भी अब हम लोगों से क्या उनका मतलब समझेगा, किम अर्थ क्रिएटर, हम लोग क्या कर सकती हैं। हम तो एक तो गोपी हैं, गाय की सेवा करने वाली, और दूसरे हमारा कोई घर द्वार नहीं है, वन में रहते हैं, वृंदावन में। इसके द्वारा गोपियों की महिमा प्रकट हो रही है, दिव्य वृंदावन धाम की निवासिनी गोपियां हैं। ये सब बात मत पूछो, ये आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, इतना विश्वास रखो। किस कारण से आएंगे, कस्मात कृष्ण ही आ जाते। तब कोई गोपी कहती सबसे बड़ा सुख है किसी की आशा न रखना, किसी की आशा न रखना, यही सबसे बड़ा सुख। परम सौख्यम ही नैराश्यम, नैराश किसी से कुछ चाहना नहीं, आशा नहीं रखना, ये बहुत भारी सुख। स्वर्णी अपि आह पिंगला, जनकपुर की पिंगला नामक वेश्या ने बात कही है, जानकारी हुई होगी कि भगवान ऋषभ देव, भगवान दत्तात्रेय का एक गुरु वह भी है। गोपियों को इस बात का पता परंपरा से चला होगा, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में वे एक है। जनकपुर के पिंगला नाम की वेश्या, वेश्या होकर भी स्वर्णी अपि, स्वर्णी ने बात कहा कि परम सौख्यम ही नैराश्यम, परम सुख है किसी की आशा नहीं रखना। तो जानती नाम न कृष्ण तथा प्यासा दुलभते, हम इस तथ्य को जानती हैं, इस नीति को जानती हैं, किसी की आशा न रखना यही सबसे बड़ा आनंद है, सुख है, लेकिन एक जानती नाम अपि, हम जिस बात को जानती हैं, ज्ञान है, तथापि कृष्ण आशा दुरत्य है, लेकिन कृष्ण के प्रति विश्वास और आशा जा नहीं रहा। कृष्ण की आशा छोड़ देना, कृष्ण से प्रेम छोड़ देना, हम लोगों के लिए संभव नहीं है। जानते हैं कि इसमें दुख है और भगवान दत्तात्रेय के गुरु ने कहा, जनकपुर की वेश्या बोली थी इस बात को, उसका नाम था पिंगला। पिंगला का मतलब होता है पीक, पीक माने कोयल और गला माने कंठ, जिसका कंठ है कोयल के समान हो वो है पिंगला। पिंगला, पिंगला ने इस बात को कहा, बेचारी स्वर्णी होकर के भी इस बात कही। हम जानती हैं इस बात को, समझ में बात आ रही है, विश्वास भी है कि पिंगला ने जो कहा वो सत्य कहा, तथापि न कृष्ण आशा दुरत्य है। दुरत्य का अर्थ है आशा को लांघ जाना या विश्वास छोड़ देना है कृष्ण आएंगे, ये जा ही नहीं रहा है। हमको पूरा विश्वास है, आशा है कि वो आएंगे, हमसे प्रेम करते हैं। तो एक आशा भी टूट जाती कि नहीं आएंगे तो सुखी कुछ होती, क्योंकि नैराश्य परम सुख है, लेकिन हे सखी यह भी सुख भाग में नहीं लिखा है। आशा लगी रहती, आज आएंगे, आज शाम हो गई तो सवेरे आएंगे, तो फिर दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, हमेशा आशा लगी रहती है कि आएंगे आएंगे। क उत्साहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम, खास करके हे सखी, हे उद्धव, वो जो बात बोलते हैं कुछ कहते हैं तो कौन ऐसा है जो उनके संविद को, बात को त्यागने का उत्साह कर सकता है? कौन ऐसा है जो ये भी सोच भी सकता है कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, ये करते हैं? ऐसा कभी हो? उनकी बातों में इतनी मधुरता है, इतनी मधुरता है, उस पर से विश्वास हटा लेना असंभव है। और किसी के लिए, पुरुष के लिए भी, कोई का अर्थ कौन, कौन ऐसा है जो उनकी बातों को, बातों पर अविश्वास करे या बातों को त्यागने का उत्साह भी करे? त्यागना तो दूर रहा, छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर सकता, उत्साह भी नहीं कर सकता। उत्तम श्लोक संबंध, अरे उत्तम श्लोक है श्री कृष्ण है, उत्तम उनका जस, श्लोक मैंने जस तमुगुण से परे है, माया से परे है, और जो तम को पार कर चुके हैं ऐसे महापुरुष जिनके जस का गान करते हैं, या उत्तम श्लोकों में, छंदों में जिनका जस गाया गया है, बहुत सुंदर ग्रंथों में भगवान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है, ये अर्थ है। उत्तम श्लोक संविदम, संविदम का अर्थ है उनके बारे में जो सम्यक जानकारी दी गई है। गीता का श्लोक या भागवत में उनके बारे विषय में कहा गया है, इनको छोड़ पाने का उत्साह कौन कर सकता है? खास करके वे डायरेक्ट कुछ बोलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उनके गीत को सुनने की इच्छा कौन त्याग सकता है? बहुत सुंदर बोलते हैं और इतना मीठा कंठ है, इवन झूठी बात भी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि उसको छोड़ने का साहस कर ही नहीं सकते। अरे जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं परंतु छोड़ना कठिन है। कौ उत्साह तो संत्यक्तु उत्तम श्लोक संविदन, अमित छतोपि जस श्री रंगा नचे होते। अब यही देखो, उदाहरण दे रहे गोपी कि श्री उनके चक्कर में ऐसा पड़ी है लक्ष्मी, और अनिच्छता, वे लक्ष्मी को चाहते नहीं है, अनिच्छता, वो इच्छा नहीं करेंगे लक्ष्मी हमारे साथ रहे, लेकिन इतनी उपेक्षा करने के बाद भी नहीं चाहते हुए भी लक्ष्मी उन्हीं के अंगों पर रहती है और हटती नहीं है। जस्य अंगात वक्षस है कि जिनके वक्षस्थल से श्री हटती ही नहीं है। श्री का एक अर्थ है सौंदर्य लक्ष्मी, ये संपद लक्ष्मी तो है ही, भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी माता, लेकिन ये लक्ष्मी कभी श्री कृष्ण को छोड़ती नहीं। जस अंगात क्वचित न च्यवते, च्युत नहीं होती, हटते ही नहीं। तो और कौन है जो श्री कृष्ण को छोड़ दे? भले कृष्ण प्रेम का प्रतिदान करें या न करें, अगर लक्ष्मी तो बेचारी पड़ी रहती है, या तो चरण में पड़ी रहती है या वक्षस्थल पर। श्री कृष्ण चाहते नहीं हैं कि लक्ष्मी उनके साथ रहे, अनिच्छत अपि। तो जब श्रीकृष्ण इतनी उपेक्षा करते हैं लक्ष्मी की, फिर भी लक्ष्मी उन्हीं के लिए बेचैन है, उन्हीं की सेवा में रहती है, बल्कि उनके शरीर से हटती ही नहीं है, तो कौन श्रीकृष्ण का संग छोड़ सकता है? श्रीकृष्ण की बात कौन त्याग सकता है? और विशेष करके श्रीकृष्ण के बारे में जो संविदाएं दी गई हैं, जानकारियां दी गई हैं, सम्यक जानकारी, जैसे श्रीमद् भागवतम, इसमें भगवान कृष्ण का सम्यक ज्ञान दिया गया है, संविदा कहते हैं। तो श्रीकृष्ण के संविद को कौन छोड़ सकता है? श्रीकृष्ण की कथा भी नहीं छूट सकती है, दुस्तेजस तक कथार्थ, और श्रीकृष्ण की बातें, चिकनी चिकनी बातें कोई नहीं छोड़ सकती। बातें चिकनी हैं और ये भी पता है कि झूठी है, फिर भी नहीं छोड़ा जा सकता। और क्या कहें उद्धव जी, इस ब्रज में कई चीजें हैं ऐसी जिनको देखने पर श्री कृष्ण का स्मरण होता ही रहता है। बहुत दुख है कि ब्रज छोड़कर के कहीं जा भी नहीं सकती हैं, और ब्रज में वो जहां लीला किए हैं वो चीजें जैसे गिना रही हैं, सरी छैल बनोदेशा गावो बेणु रवाई में शंकर सण सहाय न कृष्ण न चरिता प्रभु पुनः पुनः स्मारयंती नंद गोप सुतम बत श्री निकेत स्तत पद कैर विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। तो उद्धव जी ने कहा यदि कृष्ण का स्मरण नहीं छूटता है तो कुछ उपाय कीजिए, जमुना जी के किनारे जाकर कुछ टाइम बिताइए या गिरिराज जी के तरफ कभी समय बिताइए, घर छोड़कर के वृंदावन में जाइए, और भी जो ऊंचे प्रदेश हैं से काम में बंद है और सब वहां जाकर के बिताइए। तो गोपियां कहती हैं कि इनसे और स्मरण होता है, शरीर छैल बनो देशा गावो बीण रमाई में। हे उद्धव जी, ये सरिताएं मानसी गंगा और जमुना जब हम उधर जाती हैं तो इन नदियों को देख करके बहुत अधिक स्मरण होने लगता है श्री कृष्ण का। यही स्मरण होता है कि मानसी गंगा के तट पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे, जमुना में जल केली करते थे, जमुना के किनारे गाय चराया करते थे, वहीं हमको पनघट पर पानी भरने से रोक रहे थे, रुकते रहते हैं, फूल चुनने से रुकते हैं, वही लीलाएं याद आती। और वृंदावन में जाती हैं तो विविध लीलाएं और रास लीला आदि का स्मरण होता है। और गाओ, यहां जब गायों को देखती है उसी दृश्य की याद आती रहती है कि श्री कृष्ण गाय चलाते थे, गाय दूहते थे। और बेणु रवाई में उस समय जब उद्धव जी बैठे थे गोपियों के साथ तो कुछ बच्चे इधर उधर बांसुरी बजा रहे थे, तो कहते हैं इमे बेणु रवा, ये बांसुरी के स्वाद, इसका अर्थ है कोई बच्चे बजा रहे थे वो सुनकर कहते हैं ये बांसुरी की ध्वनि अथवा श्री कृष्ण बांसुरी बजाए थे उसका स्मरण हृदय में है, इसलिए इमे शब्द कह रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इमे इमे का अर्थ होता है ये, तो ये का क्या अर्थ हुआ, ये का अर्थ है कि उस समय कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही होगी कई जगह से, तो इमे। अथवा श्रीकृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वही ध्वनि वही छवि हृदय में धसी हुई है, इसके लिए इमे कह रहे हैं। ये सबके लिए इमे है। नदी, शैल, वन और ऊंचा देश, गांव, गौएं, बांसुरी के स्वर, संकर्षण सहाय नाम श्री बलराम जी के साथ इन्हीं स्थानों पर जो जो लीला किए कृष्णेन आचरिता प्रभु, कृष्ण ने इन स्थानों का सेवन किया। जमुना जी में स्नान किए हैं, तैरे हैं, इसका निर्मल जल पिए हैं, मानसी गंगा में स्नान करते थे और इन गायों की सेवा किए, उस स्वयं ही बांसुरी बजाए। तो श्री संकर्षण के साथ बलराम जी के साथ जो जो आचरिता सेविता जिन जिन स्थानों पर बैठे खेले खाए गोचारण में घूमे फिरे, पुनः पुनः स्मारयंती नंद गोप सुतम बत, बारम्बार वे कृष्ण का स्मरण कराते हैं। बहुत बुरा प्रदेश है ब्रज, कहीं भी जाते हैं तो केवल नंद सुत का स्मरण होता है, तो कृष्ण को भुलाना चाहती है। जब भूलना चाहते हैं लेकिन अब ये गिरिराज नहीं भूलने देता है, जमुना नहीं भूलने देती है, गौएं नहीं भूलने देती हैं, और सबसे तो श्री निकेत इस तत्पद का विस्मर्तुम नहीं वो शक्नुमा, शोभा के घर भगवान श्रीकृष्ण के चरण, भगवान के श्याम सुंदर के चरण कमलों का जो निशान बना हुआ है ब्रज में जहां तक चरण चिन्ह चरण पहाड़ी, विस्मर्तुम नहीं वो शक्नुमा, हम श्रीकृष्ण को भूल ही नहीं सकती हैं, कभी उनका विस्मरण करने में न शक्नुमा समर्थ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि विस्मरण करना चाहते हैं, कृष्ण को भूल करके सुखी हो जाए, लेकिन हमारे भाग्य में कृष्ण का विस्मरण लिखा ही नहीं है। ऐसे जगह पर रह रहे चारों तरफ से कृष्ण का स्मरण हो रहा है, जमुना जी के किनारे कृष्ण का स्मरण, गोवर्धन के तलहटी में कृष्ण का स्मरण, मानसी गंगा पर कृष्ण का स्मरण, जमुना पर कृष्ण का स्मरण, वृंदावन में कृष्ण का स्मरण, गौओं का स्मरण, बांसुरी ध्वनि का स्मरण, पुनः पुनः स्मारयंती पुनः पुनः याद दिलाते हैं, इसलिए ब्रज में जाना चाहिए। इधर कहां कोई स्थान है जो बार बार कृष्ण की याद दिला रहे, वृंदावन ऐसा स्थान है जहां वस्तुएं ऐसी हैं जिनको देख करके बारम्बार कृष्ण का स्मरण होता है। पुनः 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 स्मारयंती नंद गोप सुतम बतौ श्री निकेत इस तत्पद का विस्मर्तुम नैव शक्नुम और चरण चिन्ह आदि, इनसे हम कृष्ण को विस्मरण कर ही नहीं सकते, समर्थ नहीं है। उद्धव जिसे कह रहे हैं गत्या ललितयोदार हास लीलावलोक नहीं माधव्या गिरा हृत धियः कथम तम विस्मराम है। हे उद्धव, हम कैसे कृष्ण को विस्मरण कर सकते, कैसे भूल सकते हैं। पहले तो उनकी चाल याद आ रही, उद्धव जी के सामने ही कहने लगे कितनी सुंदर चाल चलते हैं, नृत्य करते हैं, और साधारण गति से भी चलते हैं तो लगता है कि नाचते हुए चल रहे हैं, तो साधारण चाल से चलते ही नहीं, नाचते हुए चलते ही है। कृष्ण गाय चराने जाते हैं तब भी नाचते हुए, गाय चरा करके आते हैं तब भी नाचते हैं, और वृंदावन में गौएं तो अपनी मर्जी से चरती रहती हैं, ये इधर गोपों के साथ नाचते रहते हैं, बलराम जी के साथ गोपों के साथ, कभी कभी दोनों भाई गोपों के गोष्ठी में बैठते हैं बीच में, कभी नाचते हैं दोनों भाई एक साथ, और गोप लोग बांसुरी बजाते हैं और कई प्रकार के बाजे बजाते हैं, वन से वृक्षों के पत्ते तोड़ करके उसको भी पिपहरी जैसे बना लेते हैं, उसे भी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मृदंग लेकर नहीं जाते हैं वृंदावन में। लेकिन श्री कृष्ण बलराम जब नाचने लगते हैं तो देवता लोग गोप का वेश बना करके आ करके और कई प्रकार के बाजे बजाने लगते हैं, और प्रशंसा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जब नाचते हैं कृष्ण और श्री बलराम जी तो कोई कोई गोप कहते हैं ऐसा चित्ररथ गंधर्व भी नहीं गा सकता, इतना सुंदर है। और वास्तव में चित्ररथ गंधर्व उसके आगे क्या है, भगवान जी इतना बढ़िया गायन, इतना सुंदर नृत्य और इतना सुंदर गीत। तो गति कहते हैं इसको, गति का अर्थ है चाल। तो चाल चलना, साधारण चाल से भी चलते हैं तो इस चाल को देख करके कितने लोगों का मन उसी में अटक जाता है, वही देखते के देखते रह जाता है। राधा रानी का एक पद एक भक्त ने उद्धृत किया है, लिखा है, राधा रानी कहती हैं कि अरे सखी तुम लोग धन्य हो कि श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के सभी सौंदर्य को देखी हो, उनका मुख भी देखी, उनकी चाल भी देखी, बनमाला भी देखी, मुकुट मोर मुकुट भी देखा, उनकी भुजा भी देखी, लेकिन मैं क्या कहूं सकी, मैं बहुत अभागनी हूं, उनके कुंडल को मैं देखती रह गई, कान का जो कुंडल है उसी को देखते देखते मैं पड़ी रही, तब तक श्री कृष्ण अपने घर चले गए। बहुत दुख मुझे हो रहा है कि मैं और सौंदर्य नहीं देख पाई। तो श्री कृष्ण की चाल, चाल के साथ साथ नृत्य की अद्भुत नृत्य कला है, ऐसा कोई नहीं नाच सकता है। नाचने वालों में भगवान शंकर प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये बहुत भयावह नाच करते हैं, तांडव नृत्य। भयावह नृत्य होता है, जो चार दिशाओं में हाथी हैं, ब्रह्मा जी ने जिनको नियुक्त किया है, प्रलय काल में चारों हाथी को एक त्रिशूल में खोब लेते हैं, चार दिग्गज, हिमालय पहाड़ से भी बड़े बड़े सब, और विश्व का प्रलय करने के लिए इन हाथियों को त्रिशूल में उठा करके और नाचते हैं। हमने इंग्लैंड में एक बार एक तांडव नृत्य देखा, एक भक्त शंकर जी बन करके नाच रहा था, वो इतना भयावह नाचा कि हम सोचने लगे कि भगवान शिव नाचते हुए कितना भय लगता होगा। नाच रहा था और बाजे बजाए गए थे, रिकॉर्ड किए गए थे, तांडव नृत्य का गीत बज रहा था, उसको लोग नाच रहा था। अंग्रेज भक्त थे, वो लोग नाच रहा था उस ताल, सुंदर। भय भी एक सुंदरता है, भय लग रहा था और कुछ बच्चे तो भाग चले आगे से, अभी बैठे कुर्सी पर। तो ये नटराज हैं, भगवान शिव नाचने वालों में राजा हैं श्रेष्ठ, और श्री कृष्ण नटवर है, नट में सबसे से, नट माने नाचने वाला। गोपीजन कह रहे कि श्याम सुंदर हमारे हृदय को छीन लिए, कैसे गिरा, मैं गत्या, गति से, अपनी चाल से, और ललितया एक गति का विशेषण है, ललित गति से हमारे चित्त को हर लिए, हृत धिया, और उदार हास, और उनकी उदार हंसी, उदार का यहां अर्थ है परमानंद देने वाली हंसी, उत आर, आर से परे, सीमा से परे, आर का अर्थ सभी लोग जानते हैं इधर, आर मतलब सीमा, क्यारी में जो आर मेड़ बनाया जाता है आर कहते हैं, तो उत आर का अर्थ है कि सीमा से बाहर, अर्थात परम परम आनंद देने वाली हंसी है भगवान की। तो श्याम सुंदर अपनी उदार हंसी से हमारा चित खींच ले, और ऐसी हंसी के साथ लीला व लोकन, लीला व लोकन, या अपनी लीला से अपनी चितवन से हर लिए हमारे चित को। लीला व लोक में एक शब्द की लीला अवलोक, ऐसा नहीं कि जान बुझ करके देखें किसी पर, लेकिन अपने आप अपनी मौज में वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इसके द्वारा हमारा चित्त हर लिए। और फिर लीला वलोक का एक अर्थ है हंसते हुए देखना, मटकी मारना, इशारा करना, तो लीला वलोक कहते हैं। तो लीला वलोक और उदार हंसी और ललित गति, और सबके बाद माधवी गिरा वाणी, वाणी ऐसी बोलते हैं जिसे लगता है कि मधु में पागा गया, मधुर वाणी, इन सबके द्वारा हमारा चित हर लिया गया है। तो हे उद्धव या हे सखी, तम कथम विस्मराम, हम कैसे उनको विस्मृत कर सकती हैं, यह संभव है? गोपीजनों की ये दशा है, कहते कैसे हम कृष्ण को भूल सकती हैं। इधर तो अभी प्रश्न है कि क्या किया जाए कि कृष्ण का स्मरण हो, स्मरण होगा यही सब सुनने से पढ़ने से। कथम तम विस्मराम, अब उद्धव जिसे बात कर रही थी, और तब तक भावावेश में भूल चुकी कि उद्धव हमारे सामने है, प्रियतम श्याम सुंदर ही सामने हैं, उन्हीं से कह रही है, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। मानो उच्च स्वर से कृष्ण से कह रही हैं, ये भावना करके कि श्री कृष्ण कहीं दूर हैं पर आवाज सुन सकते हैं, हे नाथ हे गोपीनाथ, हे हम गोपियों के स्वामी, हे प्रियतम, और हे रमानाथ और हे राधानाथ, रमानाथ का अर्थ है राधानाथ, हे राधा रानी के रक्षक पति, या हे लक्ष्मीपति, हे ब्रजनाथ, हे ब्रज के रक्षक, आपने ब्रज की रक्षा के लिए एक दिन गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कई प्रकार से आपने रक्षा किया है, और हे आरती नाशन, हे सबका दुख नष्ट करने वाले, सबका आरती दुख है विनाश करने वाले, हे गोविंद, यह सारा गोकुल ब्रजमंडल दुख के समुद्र में डूब रहा है, मग्न हो रहा है, तो उद्धर हे गोविंद, मग्नम गोकुलम उद्धर, ये मग्न होने जा रहा है या मग्न है दुख के समुद्र में, तो आप ब्रिजिन अर्णवात, दुख के अरणों से, दुख के समुद्र से इसका उद्धार कीजिए। उद्धव जी के साहचर्य को भी भूल गई और भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट कहने लगे, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनानवात। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथ, इस ब्रज का समस्त ब्रजवासियों का रक्षक कोई दूसरा नहीं, आप ही ब्रज के नाथ, और आप रमानाथ हैं, आप समर्थ हैं, हमारे तो प्राणनाथ आप ही हैं। जब आप विश्व का दुख दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, सबका दुख दूर करते हैं, तो ब्रजवासियों का क्यों दुख दूर नहीं करेंगे? तो यह ब्रज दुख के समुद्र में डूब रहा है। आप हे गोविंद, हे गौओं से प्रेम करने वाले, और हे गिरधारी, हे गोवर्धन उठाने वाले, आप ब्रिजिन अर्णवा दुख के समुद्र से ब्रज को बचाइए। पृष्ठ 53 पर, 63 पर 191 पद है। एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, गाना चाहिए। वह मुस्क्यानी, वह का अर्थ वही, मुस्क्यानी वृद्धभाषा है, वही मुस्कान जो आप यहां थे और हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, तो वही मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, और आप किस तरह से कोमल कोमल बात करते थे, मधुर मधुर, तो वही आपका बतियाना बतरानी, और वह लड़े किली बानी आने उर्मे रथ है, और आपकी वो लड़कीली बानी, लड़कीली बानी का मतलब है कि लड़के, लड़के की जो आदत होती है चटक मटक, उसको कहते हैं बानी, मन बानी मैंने आदत, आनी आ करके उर्मे अराती है हमारे हृदय में, आपकी वही मुस्कान और वही बातचीत करना और लड़कीली बानी, मक्खन मांगना, गोरस मांगना आदि, या दान लेना, आनि उर्मे अरती है, हृदय में आकर के अड़ी रहती है। वह गति लयन, किस प्रकार से आप चलते थे और नृत्य करते थे, गति लेना, किस प्रकार के आप गति लेते थे। वह गति लयन और बजावनी ललित बयन, बयन मतलब बांसुरी बेणू, और आपका वही ललित बांसुरी बजाना, वह हंसी दैन ये रातें न तरती है, और हमें हंस करके कुछ देते थे। हंसी दैन, हंसी देना या हंस करके देना, वो आप हंस करके कुछ चीज देते थे, कोई चीज भगवान भी चुरा लेते थे। जैसे एक बार होली में राधा रानी का बाजूबंद, बाजूबंद कहते कंकड़ को, चूड़ी को निकाल लिए, और निकाल करके धीरे से रखो, हाथ रखते ही हैं ऐसे, तो राधा रानी भगवान के लीला के आवेश में थी, गा रही थी, नृत्य कर रही थी, तब तक श्री कृष्ण कंगन सोने का निकाल लिए। कैसे पद है, हाँ, मेरे खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, और पूछते हैं श्याम सुंदर से, ये होरी हो रही थी, हमारा बाजू बंद सोने का कंगना खो गया, कौन दिया? तो श्री कृष्ण कहते हमको तो कुछ भी पता नहीं, मेरे खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में। बहुत प्रसिद्ध पद है इसको कहते, और फिर कभी देते थे तो हंस करके देते थे, वही हंसी दैन, दैन में देना, हंस करके देना। हियराते न टरती, हृदय से टरती नहीं, हियरा मैंने हृदय से टरती नहीं हो, तो मुस्कुरा कर हंस करके देना। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, और उस प्रकार से चतुराई से चिताई चाहिबे की छवि, चतुरता से चिताई चाहिबे की छवि, चतुराई से हंस करके तिरछी चितवन से देखने की छवि किस तरह देखते थे और वह छैलताई न छिन्नक बिसरती है, आपकी छैलताई आपकी सुंदरता क्षण भर भी नहीं बिसरती है। आनंद निधान प्राणतीतम सुजान जुकी, आप आनंद के निधान हैं, प्राण से भी प्रियतम हैं और सुजान हैं। सुजान का अर्थ कि आप सब कुछ जानते हैं। शुद्धि सब भांति में सो बेशुद्धि करती है, आपकी जब शुद्धि आती है तो एकदम बेशुद्ध कर देती है। ये कविता का एक गुण है, जो शुद्धि आती है तो बेशुद्ध कर देती है। आपकी शुद्धि आकर के हमको बेशुद्ध कर देती है, तो आपकी जब याद आती है तो संसार का सब कुछ भूल जाता है।
वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह मुस्कानी लड़कीली बानी आनी उर में अरती है, वह गति लय बजमनी ललित बन वह गति लयन तिलन अब जमनी ललित बन वह हसीदन रात न तरती है, वह वह चतुराई चिताई चाही देखी छवि, वह चतुराई चिताई चाही
देखी छवि। चाहिबे का अर्थ देखने की छवि, कितना सुंदर आप देखते हैं, यह अर्थ है।
वह चतुराई चिताई चाही देखी छवि, वह चतुराई वह छैलताई न छिना कवि सरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुके, आनंद निधान आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुके, आनंद निधान सुधि सब भांति न सुधि करती है, सुधि सब भांति न वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह मुस्कानी लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुके, आनंद सुधि सब भांति न बेशुद्धि करती है,
इस अवसर पर वृंदावन का नाम आया ब्रज का, तो उससे संबंधित एक पद है। ये भक्तों के भाव में है। घनानंद जी कहते हैं, गुरनी बतायो, ये इसी पृष्ठ पर 52 पृष्ठ पर है, 185 पर। गुरुजनों ने बताया, गुरनी बतायो, राधा मोहन हूं गायो, और श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर ने भी गाया है ब्रज की महिमा। गुरुजनों ने बताया है और राधा और मोहन ने भी गाया है, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, सुखद वृंदावन को गाढ़े गहिरे, दृढ़ रूप से पकड़ लो वृंदावन, दृढ़ता से पकड़ लो, चाहे गाढ़े दिन में पकड़ लो। गाढ़ा दिन कहते हैं जब विपत्ति का दिन होता है, उसको गाढ़ा दिन कहते हैं। अद्भुत अद्भुत बासठवां, अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते परे, जीवन को ला हा क्यों न ताही लही रे। ये इस पृथ्वी पर महिमंडल पर अद्भुत देश है, अद्भुत स्थान है। अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते परे, ये वृंदावन महिमंडल पर है लेकिन महिमंडल से परे है। ये वास्तव में गोलोक धाम ही है वृंदावन, पृथ्वी का अंश नहीं है। जीवन को लाहो हा क्यों न ताही लही रे, लाहो मने लाभ, जीवन का लाभ है क्यों नहीं ले रहे हो। आनंद को घन छाये रहता निरंतर है, जहां आनंद का बादल वहीं छाया रहता है, अर्थात श्री कृष्ण वहीं रहते हैं, वे आनंद घन है। आनंद को घन छाये रहता निरंतर है, सरस सुदेश सो पपीहा पन वही रे। तो ऐसे आनंद घन के लिए पपीहा की वृत्ति, चातक बनो चातक, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, वृंदावन से कभी नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, अतः अगर कृष्ण को पकड़ना है तो पपीहा बन करके उसी देश में रहो वृंदावन में। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीड़, जमुना के तीर पर जहां भगवान कृष्ण की लीला रासलीला की भीड़ रहती है, ऐसे पावन न पुलिन पै पतित परी रही रे। अरे पतित, ऐसे पवित्र जमुना जी के तट पर पड़े रहो, ये उपदेश है। गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, गुरनी बतायो सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, अद्भुत अभूत महिमंडल परे ते परे, अद्भुत जीवन को लाहो हा क्यों न ताही गहिरे, महिरे आनंद को घन छायो रहत निरंतर, आनंद को घन सरस सुदेश सौ पपीहा पन बहिरे, जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीरे सो, जमुना के तीर जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीरे सो,
पावन पुलिन पै पतित परिरई रे पावन पुलिन पै पतित परिरई रे पावन
कोई गोपी कह रही है इसी पद के ऊपर है मैं हे श्याम सुंदर आपको खोजने के लिए कहां कहां घूमी लेकिन आपसे भेंट नहीं हुई इसी बात का बहुत दुख है। इत उत जग में दिवाली सी फिरत रही मैं जहां आपका थोड़ा सा भी पता लगा कि आप यहां हैं यहां हैं तो मैं संसार में इधर उधर घूमती रही आपको देखने के लिए दीवानी होकर पगली बन करके इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही कौन बदनामी जौन सिर पर लई नहीं। और ब्रज में हमें लोग बदनाम करते हैं या उल्टा है या पति को छोड़ चुकी है ये है वो है भाई बंधुओं को नहीं मानती कौन ऐसी बदनामी है जौन सिर पर लई नहीं। अपने सिर पर मैंने कौन सी बदनामी नहीं ली सारी बदनामी हुई त्रास गुरु लोगन की आस कह अनेक सही त्रास गुरु लोगन की आस कह अनेक सही कब बहु भांति न के ताप सो तई नहीं। गुरुजनों का त्रास मतलब सास ससुर का त्रास और लोगों का त्रास आस कह अनेक सही और मैं स्वजनों से अनेक आशा रखी आशा सब विफल हुई या आपकी आशा से मैं अनेक दुख सही कब बहु भांति न के ताप सोता ही नहीं कब सुख से रही कभी नहीं सब समय ताप सताए दुख सताए आपकी विरह में। हरिचंद्र गिरी वन कुंज जहां जहां सुन हरिचंद्र कवि जी कहते हैं कि मैं जहां सुनी वे कहते हैं गोपी कहती है कि मैं जहां सुनी गिरी में गोवर्धन में सुनी कि गोवर्धन में है वन में है कुंज में है जहां जहां सुने जहां जहां सुने कि श्याम सुंदर यहां है तहां तहां कब उठी धाई के गई नहीं। कौन ऐसा समय है जब मैं दौड़ करके गई नहीं आपसे मिलने के लिए होनी अनहोनी किनी मैंने होनी को अनहोनी किया जो नहीं होने वाली थी उसको होने वाली किया और जो होने वाले थे उसको अनहोनी किया। चंडीदास जी ने इस पद पर इसी प्रकार भाव लिखा है घर कैनु बाहिर बाहिर कैनु घर मैं घर को बाहर समझा और बाहर को घर समझा वृंदावन को ही घर समझा और अपना जो घर था पति का उसको घर नहीं समझा। तो यही है होनी अनहोनी किनी सभी तिहारे होते हे श्याम सुंदर आपके लिए मैंने होनी अनहोनी सब किया तव प्राण प्यारे भेंट तुम सो भई नहीं फिर भी हे प्राण प्यारे आपसे भेंट नहीं है। इतऊत
जग में दीवानी सी फिरत रही इतऊत जग में कौन बदनामी जौन सिर पैलई नहीं कौन बदनामी जौन त्रास गुरु लोगन की आस कै अनेक सही त्रास गुरु लोगन बाहु भांति न के ताप सौंतई नहीं हरिचंद्र गिरि वन कुंज जहां जहां सुन हरिचंद्र गिरि वन कुंज जहां चांदगिरि बन कुंज जहां जहां सुनो
हरि
चंद कहां तहां कब उठी भाई कर गई नहीं होनी आन होनी तीनी सब ही तिहारे हेतु
होनी आन होनी सब तिहारे
कौ प्राण प्यारे भेंट तुम सोभई नहीं
कौ प्राण प्यारे भेंट तुम सोभई
कौ प्राण प्यारे भेंट तुम सोभई नहीं तो बहुत दिन बीत गए प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में सूरदास जी गोपियों के भाव में कहते हैं 20 पृष्ठ 61 पर है 179 पद हरि परदेश बहुत दिन लाए श्याम सुंदर बहुत दिन परदेश में लगा दिए कारी घटा देख बादल की नयन नीर भरी आए बादल की काली घटा देख करके गोपियों के आंखों में आंसू भर आए पहले वर्षा के ऋतु में हमेशा श्याम सुंदर के साथ रही हैं जब वर्षा का दिन आया काली घटा आकाश में छाई बादल की काली घटा तो नयन नीर भरी आए पा लागौ तुम वीर बटाऊ कौन देश ते भाए तो बादल को ही या किसी राहगीर को जो मथुरा जा रहा था तो कहते पा लागो तुम वीर बताओ हे भैया हे पथिक तुम्हारे चरण में प्रणाम करती हूं कौन देश थे भाई किस देश से आए हो मथुरा जा रहे हो तो इतनी पतिया मेरी दीजो मेरी मेरा पत्र ले लो मेरी चिट्ठी ले लो और दे देना जहां श्याम घन छाए कृष्ण को भी घनश्याम कहते इसलिए श्याम घन को घनश्याम को देख करके आंख में आंसू आ गए दादुर मोर पपीहा बोलत सुवत मदन जगाए अब इस ऋतु में दादुर अर्थात मेढक बोल रहे हैं मोर पपीहा सब बोल रहे हैं तो सोते हुए मदन को कामदेव को जगा रहे हैं सूरदास स्वामी जो बिछरे प्रीतम भय पर आए सूरदास जी गोपियों के भाषा भाव में कहते हैं कि स्वामी जब से बिछड़े जो यहां से चले गए तो चले गए तो फिर आए नहीं वो मथुरा के ही हो गए पराए हो गए